प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 17 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में हम उस नए पैटर्न पर आइए बात करते हैं जिसके तहत मैं आपको किसी के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना सुनाता हूं और उसके आधार पर फिर हम अपने लिए उसी घटना से जीवन के संदेश निकालने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस तरह की घटनाओं की जो सबसे बड़ी ताकत जो मुझे लगती है वो ये कि जैसे एक घटना हमने सुनी, अब देखिए कि उस घटना में ताकत इतनी होती है, डायमेंशंस इतने होते हैं, डायरेक्शंस इतने ज्यादा होते हैं, डेप्थ इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से जितने भी सुनने वाले आप सब हैं अपने अपने लिए कुछ न कुछ मैसेज निकाल सकते हैं। और मजेदार और रहस्यपूर्ण बात यह है कि हो सकता है कि सबके मैसेज अलग अलग हों और यही तो हमारी अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमताएं ये बताती हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है और उसकी पूर्ति, उससे भी बड़ी बात है मित्रों कि उसकी पूर्ति एक ही चीज से हो जाती है, घटना एक ही है लेकिन ये पता नहीं कितने लोगों के कितनी तरह की जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखती है। इसलिए मित्रों मैं जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जीवन की सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं है जो सुनाने जा रहा हूं, इसका मैं अभी आपको कोई शीर्षक नहीं दे रहा हूं। ठीक है कि मैं सुविधा के लिए फिर जरूर एक शीर्षक आखिरी में हो सकता है कि बता दूं लेकिन आप सब अपने अपने शीर्षक की खुद तलाश करें और अपने अनुकूल शीर्षक इसके लिए चुन लें। तो आइए सबसे पहले मित्रों मैं आपको घटना सुनाता हूं। दरअसल मैं जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं उनकी जीवनी पढ़ रहा था, कल की ही बात है, मैं नेपोलियन बोनापार्ट से बहुत प्रभावित हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख रहा था मैं, फिर बोनापार्ट साहब की मुझे लगा कि थोड़ी सी जीवनी भी देखनी चाहिए। तो जब जीवनी मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह बहुत खूबसूरत अंश पढ़ने को मिला। दरअसल वो अंश क्या था, वो नेपोलियन बोनापार्ट की वसीयत थी, वसीयत विल जिसे हम कहते हैं, और उन्होंने मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति के बारे में जो कुछ लिखा था, यानी कि उनके पास जो भी चीजें हैं उन चीजों का बंटवारा किन किन के बीच किस किस तरीके से किया जाए इसका उल्लेख किया था। अब आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से अपनी संपत्ति बांटी थी, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कुछ शब्द आपसे आपके सामने रखना चाहूंगा और कुछ वह जो उन्होंने बकायदे अपने वसीयत में ज्यों के त्यों लिखे हैं ताकि आपको इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत ना हो और आपको यह ना लगे कि मैंने उसको पल्यूट कर दिया है, अपनी तरफ से उसे प्रदूषित कर दिया है। मित्रों कहा जाता है कि नेपोलियन के बारे में आप जानते होंगे कि पहले तो एक छोटे से सिपाही थे वो फ्रांस की सेना में, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उन्हें अवसर मिला अपनी योग्यता दिखाने का, इसके बाद वो सेनापति बना दिए गए, वहां भी उन्होंने विजय प्राप्त की। फिर इसके बाद वहां जो 5 और 3 सदस्यों की अलग अलग समय में जो समितियां बनाई गई थी उसका उन्होंने उनको हेड बना दिया गया, उसमें भी उन्होंने यूरोप के बहुत से देशों को हराया और अंत में जाकर के फिर 1804 में उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और 1815 तक लगभग 10-11 सालों तक वो एक तरह से फ्रांस के सम्राट रहे और बाद में फिर एक युद्ध में पराजित हो जाने के बाद फिर उनको सेंट हेलेना द्वीप जो साउथ एटलांटिक महासागर में है उस सेंट हेलेना द्वीप पर निष्कासित कर दिया गया। निर्वासित जीवन उन्होंने जिया 6 साल तक और 1821 में उनका निधन हो गया। हालांकि उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 60 भी वो पूरा नहीं कर पाए थे। ये उनके जीवन का एक संक्षिप्त एक क्रोनोलॉजिकली और सफलता वाला दौर की एक जानकारी, सफलता वाले दौर की जानकारी रही है। तो दोस्तों उन्होंने जब ये वसीयत लिखी थी उस समय कहा जाता है कि उनके पास जो संपत्ति थी वो 20 करोड़ फ्रैंक थी। फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है, 20 करोड़ फ्रैंक इतनी बड़ी संपत्ति थी, बहुत बड़ी संपत्ति थी उस समय, तो और भी ज्यादा थी। अब देखिए कि उन्होंने क्या लिखा, अपनी संपत्ति का बंटवारा वो कैसे करते हैं। मैं अभी इन्वर्टेड कामा का ही हिस्सा पढ़ रहा हूं, है ना, जो उन्होंने अपने शब्दों में लिखे। मैं इस संपत्ति का आधा भाग सन 1792 से 1815 तक रणभूमि में लड़ने वाले अपने फौज के अधिकारियों, जवानों या फिर उनके उत्तराधिकारियों को देता हूं। राइट, देखिए 1792 से 1815 नेपोलियन सम्राट बनने के बाद भी एक तरीके से कह लीजिए कि सेनापति ही बने रहे, ताउम्र वो युद्ध करते रहे। और 1792 फ्रांस की क्रांति 1789 है, और 1792 में जब उनको पेरिस के विद्रोहों का दमन करने का एक मौका मिला और थोड़ी से लोगों के साथ उन्होंने जब विद्रोह को दबा दिया तो देखते देखते नेपोलियन बहुत पॉपुलर हो गया, फिर उनको सेनापति बना दिया गया, है ना। मैं इस संपत्ति का आधा भाग सन 1792 से 1815 तक रणभूमि में लड़ने वाले अपनी सेना के अधिकारियों, जवानों या उनके उत्तराधिकारियों को देता हूं, क्योंकि उन्होंने रणभूमि में मुझे कई बार विजय से नवाजा था, यानी कि उन्हीं के कारण मैं युद्ध जीत पाया। मेरी संपत्ति का दूसरा आधा भाग, अब आप देखिए, लड़ाई में बर्बाद हुए शहरों एवं जिलों को दे दिया जाए ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सके। आधा भाग उन्होंने दे दिया उनको जिनके सहयोग से उसको सफलता मिली, और आधा भाग उनको जिनको उसने नष्ट किया था, उन शहरों को और उन जिलों को जिसको उसने युद्ध में नष्ट किया था, ताकि कुछ तो उनकी भरपाई हो सके। मित्रों, ये नेपोलियन है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखिए कि 100% अपनी वो जो संपत्ति थी वो किसको दे चुके हैं, इसमें आपको परिवार नहीं दिखाई दिया, पत्नी पुत्र, उनका एक पुत्र था जिन्होंने फिर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी की थी और उससे एक पुत्र हुआ था, और उनका पुत्र ऑस्ट्रिया के राजकुमार के रूप में पल भी रहा था, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया, पत्नी को कुछ नहीं दिया, रिश्तेदारों को कुछ नहीं दिया, भाई वगैरह थे कहीं कुछ नहीं दिया, पूरी संपत्ति इस तरीके से उन्होंने बांट दी, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने दिया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, जिसकी वजह से मैंने इस हिस्से को चुना है। अब आप देखिए कि वो पुत्र को क्या देते हैं, पुत्र को दे रहे हैं, फिर इन्वर्टेड में मैं उन्हीं के वसीयत के शब्द आपके सामने रखना हूं, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, आदेश, पुस्तकें, घोड़ों की काठियां और अपने द्वारा युद्ध में पहने गए वस्त्रों को प्रदान करता हूं। और इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, मुझे विश्वास है कि यह छोटी सी भेंट मेरे पुत्र को अच्छी लगेगी और इसे देखकर वह अपने पिता को याद करेगा। मित्रों, जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आप अंदर से रोमांचित उठेंगे, सिहर उठेंगे। अब आप देखिए कि वो क्या दे रहा है अपने पुत्रों को, नेपोलियन क्या दे रहा है, ध्यान से सुनिए। अस्त्र शस्त्र, ये हथियार तुम लो, आदेश जो राजाज्ञाएं जो मैंने दी हैं, डॉक्यूमेंट्स वो कि मैंने कैसे शासन चलाया, ये मेरे आदेश हैं। पुस्तकें, पढ़ने का बहुत शौकीन थे नेपोलियन, बहुत शौकीन था वो पुस्तकें। घोड़ों की काठियां, जिन घोड़ों पर बैठ बैठ करके उसने युद्ध लड़े थे उन घोड़ों की काठियां, अस्त्र शस्त्र के साथ ही ये हैं। और अपने द्वारा युद्ध में पहने गए वस्त्रों को प्रदान करता हूं। और फिर लिखता है कि मुझे विश्वास है कि यह छोटी सी भेंट मेरे पुत्र को अच्छी लगेगी और इसे देखकर वह अपने पिता को याद करेगा। मित्रों, इस मैसेज में क्या है, हम सब जो खासकर पिता जब बन जाते हैं तो आप देखिए कि अपने बच्चों की, चाहे वो पुत्र हो या पुत्रियां हो, किस तरीके से परवरिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, उन्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े और वो पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में या जो कुछ भी कर रहे हैं उनमें केंद्रित करें। 99.9% तो पढ़ाई में ही केंद्रित करते हैं, लेकिन क्या सच में हम उन्हें जीवन के लायक बना रहे हैं, ये सोचने की बात है। जब तक हम उन्हें संघर्ष में नहीं ढालेंगे, संघर्ष में नहीं डालेंगे, तब तक इनफैक्ट मान करके चलिए कि वो नौकरी करने लायक हो सकते हैं, धन कमाने की मशीन बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीने लायक हम उन्हें नहीं बना रहे हैं। जो जिंदगी का जीना होता है मित्रों, वो संघर्षों से होता है। और संघर्ष इस तरह का नहीं कि हम कह रहे हैं कि तुम कमाओ, खाओ, अपना पेट भरो और पढ़ो, नहीं, कुछ तो बेसिक संघर्ष हमें उन्हें देने ही चाहिए। मैं देखता हूं आजकल, आप स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, बच्चे ठीक है या तो बस में जा रहे हैं, अगर दूर है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके घर नजदीक भी हैं वो या तो अपनी बाइक से जाते हैं या अपने कारों से जाते हैं या कार उन्हें छोड़ने जाती है, साइकिल गायब हो चुका है, पैदल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने अपने बच्चों को यहां तक प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि ऐसा करके हम उनके पंखों को कमजोर कर रहे हैं, उन पंखों को जिससे कि वो आसमान की उड़ान भरने वाले हैं उनको हम कमजोर कर देते हैं। उसका पहला पक्ष ये है मित्रों, जब वो अपने अधिकारियों, सैनिकों, उजाड़े गए शहरों को जब देता है तो आप देखिए कि कैसे वह दो चीजें करता है, एक उसके अंदर प्रायश्चित है, पछतावा भी है और प्रायश्चित है। जिन शहरों को उजाड़ दिया उसके लिए पछतावा है और इसके बाद प्रायश्चित के तौर पर वो आधी संपत्ति देता है, और फिर जिनके कंधों पर चढ़कर वह सम्राट बना, जिन्होंने उसके कद को ऊंचा किया, आधी संपत्ति वो अपने सैनिक और सैन्य अधिकारी और उनके परिवार के लोगों को देता है, उनके प्रति इस प्रकार से वह कृतज्ञता व्यक्त करता है। मित्रों, ये नेपोलियन की वसीयत का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जीवन के संदर्भ में ये बहुत गहरी बातें हम सबसे यह वसीयत कह रही है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब भी अपने विचार व्यक्त करें, और यदि आप ठीक समझेंगे तो इसी विषय को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे युवा वर्ग को भी संबोधित है और उन अभिभावकों को भी संबोधित है जिनके जिम्मे अभी युवा वर्ग को गढ़ना है। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।